नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम है। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट है और मेरे बदन का साइज 32-30-32 है। मेरा रंग बहुत गोरा है। दोस्तों, ब्रेस्ट के ऑपरेशन के 2 महीने बाद कुछ दिन के लिए मैं दीदी के पास रहने उनके ससुराल आ गई। मेरी दीदी की शादी दूसरे शहर में हुई है। वैसे तो मम्मी मुझे भेजती नहीं, इसलिए नहीं कि कहीं नीलम की सील न टूट जाए, क्योंकि दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर पढ़ने वाले लड़के रहते हैं। जब मैं दीदी के यहाँ जाती तो वो सब मुझे देखते रहते या बात करने की कोशिश करते। दीदी का घर 2 मंजिला है। ऊपर दीदी जीजू रहते हैं और नीचे दीदी के एक देवर रहते हैं। कुछ लड़के किराए पर कमरा लेकर रहते थे। अगर मैं सामने पड़ जाती तो कोई लड़का मुझसे बोल भी लेता था, पर ये सब दीदी को भी पसंद नहीं था। इस बात की चिंता दीदी को भी थी कि कहीं कोई लड़का नीलम को पटाकर चोद ना दे। मेरी दीदी कहती है कि आजकल के लड़कों का प्यार तो बस चूत पर जाकर ख़त्म हो जाता है, वो तो सिर्फ चूत के प्यासे होते हैं। वैसे मैं इससे पहले 1-2 बार गर्मियों में दीदी के पास रहने आई थी। मेरा मन होता है यार कि मैं दीदी के पास रहूं, फिर भी मम्मी मना कर देती है। इसी बात पर कभी कभी मम्मी से मेरा झगड़ा भी हो जाता था। दोस्तों, अब मैं आपको अपने जीजू के बारे में बताती हूँ। उनकी लंबाई अच्छी है, वो बिल्कुल किसी क्रिकेट के प्लेयर की तरह दिखते हैं और मुझसे बहुत हंसी मजाक करते हैं। जब से दीदी की शादी हुई है ना, तब से जीजू मुझे चोदने की फिराक में है, ये मैंने नोटिस किया है। मैं दीदी के यहाँ गई तो मुझे देखते ही जीजू बोले, लो आ गई साली साहिबा, कैसी हो साली जी। वो दीदी के सामने भी मुझे छेड़ते रहते हैं। मेरे ब्रेस्ट पे ऑपरेशन का निशान है, इसके लिए जीजू कहते कि अब तो तुम्हारे बूब्स पे मोहर लग गई है, जरा मैं भी तो देखूं कैसी है मोहर। ऐसा बोलकर मुझे चिढ़ाते हैं। एक बार जीजू बोले, काश मैं डॉक्टर होता, फिर तुम्हारा ऑपरेशन मैं करता। तो मैंने कहा, इसमें आप क्या कर लेते? तो बोले, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हें बिल्कुल नंगी करके तुम्हारा ऑपरेशन करता। मुझे बड़ी शर्म आई, लेकिन जीजू को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। एक दिन मैंने सलवार सूट पहना था जिसमें पीछे से मेरी ब्रा की दोनों पट्टियाँ दिख रही थी, जो मुझे नहीं पता था। जब जीजू ने देखा तो मेरी ब्रा की दोनों पट्टियों को पीछे से पकड़कर बोले, साली साहिबा, ये घोड़ी की लगाम तो ठीक कर लो। वो दूती के सामने भी मजाक करते हैं, कहते हैं साली तो आधी घरवाली होती है। फिर जीजू बोले, वैसे नीलम है बड़ी गोरी। एक बार जीजू बोले, अगर उस समय तुम्हारी उम्र कम नहीं होती ना, तो मैं तुमसे ही शादी करता। दोस्तों, उन दिनों गर्मियों के दिन थे और गर्मी की वजह से मेरी पीठ पे घमौरियाँ हो गई थी, तो दीदी मेरी पीठ पर नाइसिल का पाउडर लगा देती थी। एक बार जब दीदी मेरी कुर्ती ऊपर करके मेरे पीठ पर नाइसिल का पाउडर लगा रही थी तो अचानक से जीजू आकर मेरी ब्रा का हुक खोल दिया। जब मेरी ब्रा का हुक खुला तब मुझे पता चला। फिर जीजू कहने लगे, साली साहिबा, रात को इतनी टाइट ब्रा पहनकर मत सोया करो। मैंने कहा, दीदी देखो ना, जीजू परेशान कर रहे हैं। तो दीदी बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं, रात को ब्रा निकाल कर सोया कर। और तब से मैं रोज सोते समय ब्रा उतार कर सोती थी। मैं अपना नाइट सूट लाना भूल गई थी तो दीदी ने अपनी गाउन दे दिया, जो मुझे बहुत ढीला आया। उसका गला भी बड़ा था जिससे मेरे स्तन भी दिखाई दे रहे थे और जीजू की नज़र वहीं रहती थी। दोस्तों, उस समय दीदी के कमरे में AC लगा हुआ था, इसलिए दीदी ने कहा, तुम हमारे कमरे में सो जाया करो। तो मैं दीदी के कमरे में सोती थी। दीदी के कमरे में डबल बेड पर पड़ा हुआ था जिसमें एक तरफ मैं सोती, फिर दीदू और सबसे किनारे जीजू सोते थे, मतलब बीच में दीदी सोती थी। एक बार रात को पता नहीं कैसे जीजू सोते सोते बीच में आ गए और मुझसे चिपक कर सोने लगे। वो तो मुझे पेशाब लगी और मेरी आंखें खुल गई। जब मैंने लाइट जलाकर देखा तो जीजू थे। बताओ, अगर कहीं दीदी देख लेती तो क्या होता? भाई उनका लंड तो तना हुआ था। वो रात को सिर्फ अंडरवियर और बनियान में सोते हैं। दोस्तों एक बार पता नहीं कैसे मेरे पूरे शरीर में खुजली की बीमारी हो गई थी। मैं जहाँ पे जितना भी खुजलाती और खुजली होती। जब मैं बूब्स पे खुजलाती तो अब गोरे गोरे बूब्स खुजलाने से लाल हो जाते थे। मैं जोर से खुजलाती तो जीजू हंसने लगते। फिर दीदी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उसने मुझे नहाने के लिए दवाई वाला साबुन और एक तेल दिया जो मुझे नहाने से आधे घंटे पहले अपने शरीर पे लगाना था और फिर उस साबुन से नहाना था। सब जगह तो मैं तेल लगा लेती लेकिन पीठ पर नहीं लगा पाती थी। तो मैंने दीदी से कहा दीदी मेरी पीठ पर तेल लगाती थी। एक दिन जीजू ने देख लिया तो मजाक में बोले, साली जी सारे कपड़े उतार दो मैं तेल लगा देता हूँ। सारी मुसीबत जैसी उसी साल मुझ पर आई थी। जीजू मजाक में बोलते थे, गोरी हो या काली सबसे प्यारी होती है अपने जीजू की साली, वो भी छोटी वाली। और मैं तो वैसे भी सबसे छोटी थी। दोस्तों आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। दोस्तों उन गर्मी के दिनों में मैं नहाकर तौलिए से बिना पोंछे गीले बदन पर कपड़े पहन लेती थी जिससे गीलापन बनता था और थोड़ी देर तक ठंडा ठंडा लगता था। मज़ा भी आता था। लेकिन यही मज़ा कुछ दिनों में सज़ा में बदल गई। अब मैं रोज नहाकर ऐसा करती थी। इससे मेरी चूत और उसके आसपास छोटे छोटे दाने निकल आए जिनसे खूब खुजली मचती थी। एक बार खुजलाते हुए जीजू ने भी देखा और दीदी ने भी। फिर एक दिन मैंने दीदी को चूत पर निकले दानों के बारे में बता दिया तो दीदी बोली, ठीक है कल डॉक्टर के पास चलकर दवाई ले आते हैं। अब दोस्तों डॉक्टर का नाम सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगी कि डॉक्टर तो मेरी चूत देखेगा तो मैंने दीदी से मना कर दिया। फिर अगले दिन सुबह दीदी बोली, नीलम चलो हॉस्पिटल दवाई लेकर आओ, तो मैंने मना कर दिया। दीदी गुस्सा होकर बोली, दवाई नहीं लोगी तो दाने कैसे ठीक होंगे। मैंने कहा, दीदी अपने आप ठीक हो जाएंगे। दवाई का नाम सुनकर जीजू बोले, क्या हो गया, किस चीज की दवाई लेने जा रही हो। अब मैं कैसे बताती कि मेरी चूत पे दाने निकल आए, जीजू दीदी से पूछने लगे। फिर दीदी ने इशारे में जीजू को बताया कि नीलम की चूत पर दाने निकल आए। जीजू मेरी तरफ देखकर हंसने कहने लगे, साली जी जाकर दवाई ले आओ ना, क्या परेशानी है। मैंने मना कर दिया और कहा मुझे नहीं जाना। फिर दीदी ने कहा, जीजू से ऐसा करो आप पास वाले क्लिनिक से आप डॉक्टर को घर पे बुला लाओ। ये सुनकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। फिर जीजू बाहर चले गए और थोड़ी देर बाद ही क्लिनिक से एक महिला नर्स को बुला कर ले आए। नर्स को देखकर मुझे चलो सुकून मिला कि चलो कोई जेंट्स तो नहीं है ना, लेडीज है। फिर उसने मुझसे पूछा दाने कहाँ पर हैं, कितने दिनों से हैं। मैंने सब बताया। फिर वो बोली, दिखाओ दाने कितने बड़े हैं। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि कमरे में बाहर जीजू खड़े थे। दीदी गुस्सा होकर बोली, जब नर्स कह रही है तो दिखा दो ना। इतना कहते ही दीदी ने मुझे बेड पे लिटाया और मेरी सलवार का नाड़ा पकड़कर खींच दिया। मैंने दोनों हाथों से कसकर अपनी सलवार पकड़ी और उतारने नहीं दी। नर्स से मैंने कहा, आप ऐसे दवाई दे दो। तो नर्स बोली, बिना देखे तो दवाई देना ठीक नहीं है ना, एक बार चेक करा लो, उसी के हिसाब से दवाई ज्यादा ठीक रहती है। जब मैंने सलवार नहीं छोड़ी तो दीदी ने जीजू को आवाज लगा दी, अजी सुनते हो, नीलम तो दिखा ही नहीं रही है। दीदी के इतना कहते ही जीजू अंदर आ गए और जीजू ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर ऊपर कर दिए। दीदी ने मेरी सलवार और पैंटी निकालकर मेरे दोनों पैरों को पूरा फैल कर खोला दिया। मैं अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रही थी। दोस्तों अब मेरी चूत उन तीनों के सामने थी। मेरी नंगी चूत देखते जीजू के मुंह से निकला, आए हाय। उस नर्स ने एक दो मिनट तक मेरी चूत को चेक किया। मुझे बड़ी गुदगुदी हो रही थी। जब नर्स ने हाथ लगाया तो मेरी तो सिसकारियां निकलती थीं। जीजू की नजर तो हटी नहीं रही थी, वो बड़ी ध्यान से मेरी चूत को देख रहे थे। फिर उस नर्स ने कुछ दवाइयां लिखी। मैंने अपनी सलवार और पैंटी पहन ली और जीजू मेरी दवाइयां ले आए। उसमें एक जूत पर लगाने के लिए ट्यूब भी लिखा था, जिसे मैं रात को सोने से पहले अपनी जूत के चारों तरफ लगाती थी, और मुझे पैंटी पहनना मना था। फिर लगभग 10-12 दिन में मेरे दाने ठीक हो गए। बीच बीच में दीदी पूछ देती थी, अब कैसे है दाने? तो मैं कह देती थी कि अब तो ठीक हो रहे हैं। एक दिन दीदी ने पैंटी उतरवा कर देखी भी थी। उस दिन से जीजू और भी ज्यादा मजाक करते, कहते अपने जूत के दाने दिखा दो, कभी कहते साली जी कसम से तुम्हारी जूत बहुत गोरी है। मुझे बड़ी शर्म आती, लेकिन वो बेहिचक खुलकर बोलते थे। एक दो बार बोले, साली जी तुम्हारी सील मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। एक दिन की बात है, सुबह जीजू ऑफिस गए और दीदी को बैंक का कुछ काम था तो वो बैंक चली गई। मैं घर पर ही थी, तभी मेरे फोन पर एक मिस्ड कॉल आई। मैंने देखा कि मेरी सहेली की मिस कॉल थी, बहुत दिनों से उससे बात नहीं हो पाई। फिर मैंने कॉल की और अपनी सहेली से बातें करने लगी। वो मेरा हालचाल पूछने लगी तो मैंने उसे अपने ब्रेस्ट के ऑपरेशन वाली बात बताई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। सुनकर उसे बहुत अचंभा हुआ। फिर मैंने जूत पर दाने निकलने वाली भी बात बताई और कहा कि मेरी जूत पर जो दाने निकले थे वो अब ठीक हो गए। जब मैंने इतना कहा, तभी पीछे से जीजू आ गए और बोले, साली साहिबा जूत पर दाने ठीक हो गए, बताया भी नहीं। पता नहीं कब जीजू ऑफिस से आ गए। जीजू बोले, किसका फोन था साली जी? मैंने कहा मेरी सहेली का फोन था, और मैंने तुरंत फोन काट दिया। जीजू बोले, तुम्हारी जूत पर दाने ठीक हो गए, दिखाओ जरा। इतना कहकर जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हाथ छुड़ाने लगी और बोली, नहीं जीजू अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले, साली साहिबा एक बार मैं भी तो देख लूँ कि अब दवाई की जरूरत है या नहीं। फिर जीजू मुझे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले गए और डबल बेड पर लिटा दिया। मैं कहने लगी, छोड़ो जीजू, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जीजू ने एक नहीं सुनी और मेरी लोअर उतार दी। अब मैं पैंटी में थी। फिर जीजू ने मेरी पैंटी कच्ची भी निकाल दी। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी यार। जीजू बोले, साली साहिबा जिस दिन से तुम्हारी जूत देखी है ना, पागल हो गई हूँ मैं। मैंने कसकर दोनों जांघों को चिपका लिया और जूत को छिपाने लगी, लेकिन जीजू ने मेरे दोनों पैरों को खोलकर फैलाया और मेरी जूत को करीब से देखने लगे। फिर जीजू मेरे भगनासा को छूने सहलाने लगे। मैंने कहा, जीजू मत करो, प्लीज छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन जीजू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बिठाया और मेरी कमीज को निकाला। अब मैं सिर्फ सफेद रंग की ब्रा में थी। फिर जीजू ने भी अपने सारे कपड़े निकाल दिए और बनियान और अंडरवेयर में आ गए। उनका लंड मुझे अंडरवेयर के अंदर ही फूला हुआ दिख रहा था। फिर जीजू ने मुझे उठाया और फ्रेंच किस करने लगे, यानी मेरी जीभ को चूस रहे थे और जीभ से जीभ लड़ा रहे थे। मैं तो बड़ी हॉट हो रही थी। फिर जीजू उठे और अपना अंडरवेयर भी निकाल दिया। अंडरवेयर उतारते ही उनका लिंग ना किसी स्प्रिंग की तरह हिल रहा था, बहुत लंबा और मोटा। फिर जीजू बोले, लो चूसो। उन्होंने अपना लंड मेरे होठों के पास कर दिया। मैंने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। फिर जीजू ने मुझे उठाया और पीछे से मेरे ब्रा का हुक खोलकर दूर फेंक दिया। अब जीजू और मैं बिल्कुल नंगे थे। कसम से मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, इतनी शर्म कि मैंने डबल बेड की चादर ओढ़ ली। लेकिन जीजू ने उसे भी हटाकर अलग कर दिया। मैंने कहा, जीजू मत करो, प्लीज छोड़ दो, दीदी आ जाएगी। लेकिन जीजू अब कहाँ मानने वाले थे, दीदी भी 3-4 घंटे से पहले तो आती नहीं, ये उनको पता था। फिर जीजू ने मुझे 69 वाली पोजीशन में किया और बोले, साली साहिब आप चूसो। अब उनका लिंग बिल्कुल मेरे होठों पर था, लेकिन मैंने अपने होठों को कस के बंद किया हुआ था। दूसरी तरफ जीजू अपने जीभ की नोक से मेरे जूत के दाने को छू रहे थे। फिर जीजू ने अपने दांत से मेरे दाने पर हल्का से काटा। आह आह आह, मेरा मुंह खुल गया और जीजू ने अपने लिंग का सुपाड़ा मेरे होठों के अंदर कर दिया। मैंने लिंक को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही और जीजू ने पूरा लिंग मेरे हलक तक डाल दिया। जब लिंग मेरे हलक में जाकर फंसा तब मुझे एहसास हुआ कि लिंग कितना लंबा, मोटा और सख्त होता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो चूसाया नहीं था, ना मैंने चूसा था, लेकिन जीजू चूसा रहे थे। लगभग 10 मिनट तक जीजू अपना लिंग चूसाते रहे। मेरा दम घुटने लगा, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उधर जीजू ने अपनी जीभ मेरी जूत में डाल रखी थी। मैं तो बस मछली की तरह तड़प रही थी यार। 10 मिनट तक ये सब करने में मैं और जीजू इतने गर्म हो गए कि एक साथ झड़ गए। जीजू ने सारा माल मेरे मुंह में निकाला और लिंग फिर भी नहीं निकाला, और ये नतीजा हुआ कि मुझे उल्टी हो गई। मैंने कहा, जीजू आप बहुत गंदे हो यार। फिर जीजू ने मुझे कुल्ला करवाया और गोदी में उठाकर कमरे में ले गए। मैंने कहा, जीजू अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ दो। तो जीजू बोले, अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे लिटाया और लंका सुपारा मेरी जूत की दरार में फंसा दिया और अपने एक हाथ से मेरा मुंह बंद किया और धक्का लगाया। ओहो, आधा लिंग अंदर चला गया। मैं तो छटपटाने लगी और उनका हाथ हटाने लगी, लेकिन हटा ही नहीं पाई। इतने में जीजू ने कसकर दूसरा धक्का लगाया जिससे उनका पूरा लंड अंदर चला गया। मैं तो बिलबिला गई और रोने लगी। जीजू का लिंग मेरे चूत में ऐसे कस गया जैसे कोई नट बोल्ट आपस में कसते हैं। जीजू बोले, मेरी जान, बड़ी कसी हुई चूत है तेरी। मेरी चूत में लगभग 3 महीने बाद कोई लंड गया था, इसलिए कसी हुई तो होगी। दोस्तों, आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। फिर जीजू ने हल्के हल्के धक्के लगाने शुरू किए। अब मेरी सिसकारियां निकलने लगी। 5 मिनट बाद जीजू रुके और बोले, साली साहिबा, तुम्हारी सील तो पहले से खुली हुई है। क्योंकि मेरी चूत से खून नहीं निकला था इसलिए जीजू समझ गए, वो तो इस मामले में पक्के खिलाड़ी थे। शादी से पहले उन्होंने बहुत सारी सीलें तोड़ी थी। अब मैं क्या कहती, मेरी सील तो डॉक्टर ने तोड़ी थी, लेकिन जीजू तो यही समझ रहे थे कि मेरी सील बंद होगी। और फिर मुझे वो डॉक्टर वाली बात बतानी पड़ी। फिर जीजू हल्के हल्के धक्के लगाने लगे और मेरी सिसकारियाँ निकल रही थी। 10-15 मिनट के बाद जीजू झड़ गए। उन्होंने कॉन्डम पहना हुआ था। फिर जीजू ने थोड़ी देर आराम किया और तब उनका लंड फिर तन गया। दूसरा कॉन्डम लगाकर उन्होंने मुझे घोड़ी बनाया और पीछे से लंड को चूत में डालकर चोदने लगे। इस बार जीजू ने 20 मिनट तक चोदा। उस दिन जीजू ने मुझे 2.5 घंटे में 4 बार चोदा। उन्होंने वाइग्रा की गोली खाई थी। फिर लगभग 3 घंटे बाद दीदी आ गई। दोस्तों, उसके बाद जब भी मौका मिलता जीजू मेरी चुदाई करते थे। मैं वहाँ 1 महीने रही थी और 1 महीने में मेरी बहुत बार चुदाई हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी, बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय।